अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 129। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे श्रद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो
आयर्याणं,
नमो अज्जायाणं,
नमो लोये सवसाहूणं, त्रिभुवन तिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्र परिपूजम्।
वक्षे अनुप्रेक्षाः
भविकजनानन्द जननी।
यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उसके अभी तक हमने 10 भावनाओं को देखा था। आज 11 नंबर की भावना, बोधि दुर्लभ भावना जिसको कहते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। अभी ये प्रश्न पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन पूछ ही लेता हूं कि अभी तक जो हमने 10 भावनाएं देखी हैं, वो कौन सी है, कौन बता पाएगा? आप बताएंगे? आप बोलो 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 जल्दी जल्दी। अनित्य, अशरण,
संसार,
एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संवर, एक रहेगी निर्जरा।
निर्जरा
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, एकाध रह जावे चलेगा, लेकिन कम से कम सब तो सही बताएं। तो अभी यहाँ पर हमने बोधि दुर्लभ भावना यानी 11वें नंबर की जो भावना है, इसको हम देखने जा रहे हैं। देखो, बोधि यानी ज्ञान, और वो ज्ञान दुर्लभ है ऐसा बता रहे हैं।
हाँ, समय ज्ञान की बात।
देखो, ज्ञान तो इस जीव का स्वभाव है, फिर भी उसको बोधि दुर्लभ कहा। क्यों? कि दुनियादारी का ज्ञान तो इस जीव को अनादि से है, परलक्षी इसका हमेशा उपयोग होने के कारण उसको बाहर का सारा ज्ञान है, लेकिन स्व ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वह दुर्लभ है ऐसा कहने में आ रहा है। तो अभी यहाँ कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। हाँ, गाथा नंबर 284।
ये दुर्लभ में दुर्लभ क्या बात है, वो उत्तरोत्तर दुर्लभ बातों की यहाँ लिस्ट बताएंगे। अब यहाँ पढ़ते हैं अभी हम। जीवः अनन्तकालं वसति निगोदेषु आदिपरिहीनः, ततः निःसृत्य पृथ्वी कायादिकः भवति। क्या कहते हैं, जीव जो है वो अनादिकाल से कहाँ रहता है? तो निगोद में। निगोद के आगे लिखा आदिपरिहीनः। आदि परिहीन का अर्थ क्या होता है वीरेश भाई, आपको पता चला? आदि परिहीन, उसका अर्थ क्या होता है? परिहीन यानी रहित, आदि से रहित यानी अनादि, यानी अनादि से यह जीव निगोद में रहते आया है। तो कहते जीव आदि परिहीन अनादि काल से निगोदेशु यानी निगोद में अनंत कालम बसती, अनंत काल तक इसने निगोद में बताया, इन्हें नित्य निगोद से निकला। ततः निसृत्य, वहां से निकलकर, निकलकर का अर्थ होता है पहले तो बारंबार निगोद में ही जन्म मरण चलता था, वहां से निकलकर पृथ्वी कायादिकः भवति। पृथ्वी काय आदिक यानी अन्य एकेंद्रिय होता है, निगोद में से अन्य एकेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना भी दुर्लभ है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। निगोद भी एकेंद्रिय है और नित्य निगोद में से बाहर एक भव मिलना भी महामुश्किल से प्राप्त होता है, फिर दोबारा निगोद में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? इतर निगोद या चतुर्गति निगोद। ये निगोद का अर्थ मालूम है ना कि नहीं है? निगोद किसको कहना? हाँ, साधारण। वो कौन से कायिक वाला जीव है? यहाँ पृथ्वी कायिक लिखा है ना, तो निगोद को भी कोई ना कोई काया तो होगी, तो उसके कौन से काय वाला जीव कहेंगे? वनस्पति कायिक जीव। वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते प्रत्येक वनस्पति कायिक होता है, एक साधारण वनस्पति कायिक होता है। तो जो साधारण वनस्पति कायिक जीव है उसी का दूसरा नाम है निगोद। अभी उसमें बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, पर्याप्त भेद है, उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं चल रही है। तो ये जो निगोद की क्या स्पेशलिस्टी, साधारण क्या है उनमें? साधारण एक कॉमन है, अनंत जीवों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन? एक ही शरीर है अनंत जीवों का, एक अवतारिक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। तो अनंत जीव रहते तो उनका जो आहार यानी पुद्गल का जो ग्रहण है वो भी एक ही है, उसका श्वासोश्वास भी एक ही है, और आयु भी समान है। एक तो नहीं कह सकते, सबकी समान है। एक समय में एक साथ जन्मते हैं, और जो बैच एक साथ जन्मी है वो पूरी की पूरी बैच एक समय में मरकर अपने अपने परिणाम के अनुसार अन्य अन्य पर्याय में वहाँ गमन होता है उनका। कोई दोबारा निगोद में जन्मेंगे तो कोई अन्य एकेंद्रिय में जाएंगे, कोई पंचेंद्रिय तिर्यंचा मनुष्य में भी जन्म ले सकता है। अभी अर्थ यहाँ का देखेंगे। आ जीव संसार मा अनादि काल थी मांडी अनंत काल तो निगोद मा रहे चे। वो हेडक्वार्टर है ना, वहां से निकला है, अने त्याथी निकली पृथ्वी कायादि पर्याय ने धारण करे चे। अनादि थी अनंत काल सुधी नित्य निगोद मा जीवनो वास छे। जब जीवनो वास छे कहा तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा बात है, कोई तो वहां से निकलकर अन्य पर्याय को धारण किया है, परंतु अनादि से लेकर अनंत काल तक निगोद, नित्य निगोद वाली जो कोई जीव समास हम कहेंगे उसको, जीव का एक भेद, वहां हमेशा ही कितने ही अनंत जीव नित्य निगोद में रहेंगे अनादि से लेकर अनंत काल तक। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो नित्य निगोद खाली हो जाए। संसारी राशि का जो मेजोरिटी है वो तो निगोद में रहते हैं, वो निगोद में तो नित्य निगोद, इतर निगोद, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, पर्याप्त सब आ गए। त्या एक शरीर में अनंतानंत जीवों ना, अनंतानंत कह दिया ना, एक समय में अनंत जन्मते हैं, ऐसे हर समय चलता है, तो लगातार वहां अनंत 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 जन्मते रहते हैं, तो उस शरीर में तो अनंतानंत जीव रहते ही है। तो एक शरीर में अनंतानंत जीवों ना आहार, श्वासोश्वास, जीवन, मरण समान छे। एक श्वास में 18वां भाग जेटलू आयुष्य छे। देखो ये जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण जो लिखा है वो अपर्याप्त निगोद के बारे में ही लागू होता है। निगोद पर्याप्त भी होते हैं, फिर भी उसके तो जगन्य आयु, तो ये जगन्य क्या, उत्कृष्ट भी आयु अंतर्मूर्त तो होगी, उससे ज्यादा आयु नहीं होगी। परंतु वो तो कहने की पद्धति ना, एक श्वास में 18 बार जन्मियों मरियो, तो लोगों को लगता है वो केवल निगोद की बात है, अन्य की नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ। एक श्वास के 18वें भाग जितना जो आयुष्य है वो तो किस किस जीव को हो सकता है? अरविंद भाई आपको पता है कौन कौन से जीवों को ये श्वास का 18वां भाग प्रमाण आयु हो सकता है? हाँ, निगोद तो एक हो गया। हाँ, और कहाँ किसी को होता है? हाँ बोलो जयाबेन, बोलो। अपर्याप्त, जिसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं, वही मेरा प्रश्न है। ये लब्धि अपर्याप्त जीव कौन कौन से पर्याय में होते हैं? यानी एकेंद्रिय में होते हैं क्या, पंचेंद्रिय में होते हैं, कहाँ होते हैं? लब्धि अपर्याप्त जीव कहाँ कहाँ होते हैं? हाँ, चार इंद्रिय तक होते हैं। हाँ, संगी असंगी सभी में होते। अरे मनुष्य में भी होते हैं, वो भी श्वास के 18वें भाग वाले है हो। मनुष्य अपर्याप्त भी श्वास के 18वें भाग प्रमाण जो आयु बताई है वो एक इंद्रिय में सूक्ष्म बाधा है, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, तिरियंच भी और मनुष्य भी, उनमें भी ये लब्धि अपर्याप्त वाला जीव समाज जिसको कहेंगे, जो उसका भेद वो पाया जाता है। हो सकता है ना, मनुष्य भी हो सकता है तो तिरियंच भी हो सकता है। हाँ,
नहीं हो।
सभी में ये पर्याप्त पर्याप्त पाए जाते हैं, असंगी में भी और संगी में भी। हाँ, 14 जीव समाज देखे ने, तो उसमें से 7 तो अपर्याप्त के हैं और 7 पर्याप्त है। अब देवनारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, भोग भूमि वाले पर्याप्त ही होते हैं। तो ये जो निगोद का वर्णन, अभी प्रश्न है, ये निगोद जो है उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, बादर और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म निगोद को, तो सूक्ष्म जीव उसी को कहते हैं जिसको दूसरे के आधार की जरूरत नहीं है, परंतु बादर उसी को कहते किसी के आधार से रहते हैं। तो ये बादर निगोद जो है अन्य शरीरों के आधार से रहते हैं। तो अन्य कौन से शरीरों के आधार से रहते हैं, ये पहला प्रश्न। फिर पूछेंगे कौन से शरीरों के आधार से नहीं रहते, बोलो प्रभावेन। निगोद कहाँ रहते हैं ये तो पता चलना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अनंत जीव राशि है और बादर निगोद जो है, हाँ बोलो, वनस्पति के आधार से। आप क्या कहते हैं वीरेश भाई, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बोलो नलिन भाई। प्रेरणा बहन बोलो। हाँ, मनुष्यों के औदारिक शरीर के आधार से, वैसे ही तिर्यंच में किसको लेना, तिर्यंच तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब होते हैं, तो किसको किसको लेना? हाँ, सभी को लेना, पृथ्वी काय को भी लेना, अग्नि।
हाँ, कुछ कहना चाहते?
हाँ बोलो।
एक इंद्रिय को छोड़कर,
4 को छोड़कर, क्योंकि वनस्पति का 1 को तो हमने पकड़ा है, जो प्रत्येक वनस्पति है उसके आधार से भी निगोद रह सकते हैं। दूसरी बात, तिर्यंच और मनुष्यों के जो औदारिक शरीर है, अभी तिर्यंच में कौन कौन से लेने, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, यानी त्रस के, त्रस में जो तिर्यंचों को लेना, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, तिर्यंचों के शरीर तथा मनुष्यों के शरीर, इनके आधार से बादर निगोद रहते हैं। हमने देखा ना 12वें गुणस्थान में मुनिराज के शरीर में से निगोद अपनी अपनी आयु पूर्ण करके निकल जाते हैं, दोबारा वहां उत्पन्न नहीं होते हैं, और 13वें गुणस्थान से ही वो परम औदारिक शरीर बन जाता है। प्रत्येक वनस्पति में हो या जेम नहीं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आधार से बादर निगोद रहते हैं उस प्रत्येक वनस्पति को सप्रतिष्ठित या ओनली प्रतिष्ठित कहेंगे, प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से बादर निगोद नहीं रहते उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तो अभी मेरा प्रश्न है, हमने इतनी लिस्ट देखी कहाँ कहाँ रहते हैं, उस पर से आपको ये बताना है कि निगोद कौन कौन से जीवों के शरीरों में नहीं पाए जाते, बोलो प्रभावेन। हाँ, अच्छा, देव के शरीर, नारकी के शरीर, यानी वैकिरिक शरीर के आधार से नहीं रहते। हाँ, ये अश्विन भाई सब पेपर फोड़ देंगे तो सब बाकी लोग ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, वीरेश भाई,
4 एकेंद्रीय बताए उन्होंने।
हाँ, वनस्पति काय के अलावा जो 4 एकेंद्रीय, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और जल कायिक के आधार से निगोद नहीं रहते। और कोई रह गया? हाँ हाँ, उसके आधार से रहेंगे। हाँ बिल्कुल रहेंगे, भोग भूमि के तिर्यंच मनुष्यों के भी शरीर के आधार से निगोद। हाँ, आहारक शरीर के आधार से नहीं रहे। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, जो अरिहंतो भगवान है, संयोग अयोग वाले, परम औदारिक, केवली के शरीर, ऐसा लेना उसमें, केवली के शरीर, उनके आधार से वहाँ निगोद राशि नहीं रहेगी।
आठ हो गए,
आठ हो गए ना, ये आठ अंक के आधार से नहीं रहते हैं। चार तो अन्य के लिए, देव और लिए, नार के लिए, आहार शरीर वाले और केवली, तो वहां ये निगोद बादर निगोद नहीं रहते। सूक्ष्म निगोद तो कोई किसी शरीर के आधार से नहीं रहते, तो वो यहाँ भी पाए जाएंगे, बाहर भी पाए जाएंगे, अंतराल में भी पाए जाएंगे, सर्वत्र पाए जाएंगे। लोकाकाश में सर्वत्र सूक्ष्म निगोद भरे पड़े हैं ठसा ठस, क्योंकि उसको तो कोई आधार की अपेक्षा ही नहीं है किसी के, वो सर्वत्र है। वहां भी उनके एक एक शरीर में अनंत जीव है। ये हम आलू प्याज आदि जो देखते हैं वो तो प्रत्येक के आधार से रहने वाले वो बादरे, तो उसको भी निगोद कह देते हैं।
देखो अभी हमने क्या देखा, दो इंद्रिय वाला जीव हो, तीन इंद्रिय वाला जीव हो, या दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जिनको हम त्रस कहते हैं, अब इनके आधार से निगोदिया जीव रहते हैं, ये जानने से हमको क्या फायदा है? अरे आत्मा की बात करो ना, सूक्ष्म बातचीत चाहिए, ये क्या है? अरे हाँ भाई सुन तो सही, कि जब हम रात्रि भोजन करते हैं तो ये त्रस जीव जो शाम के वक्त उत्पन्न होते हैं, वो सहज रूप से जिस रूप से अपना भोजन है ना, उस रूप से बनते हैं भाई,
उसमें उत्पन्न होते हैं, उस जाति के समूर्छन होते हैं,
पता ही नहीं लगता हमको इसमें ये है करके, और बाकी आके गिरे वो तो जुदे ख्याल में आया। देखो आपको मालूम है, आपने कभी मटर, मटर समझते, मटर क्या बोलते आप लोग, वटाना, वटाना वो खोला है कभी, तो उसके अंदर जो कोई ये क्या बोलते हैं लट मिलती है,
उसी
वो लाल रंग की होती है कि नहीं, पीले कौन से, ग्रीन, ग्रीन कलर की वटाना मटर जो भी है तुम्हारा उसके अंदर, और आपको मालूम है लाल मिर्ची जो सूखी मिर्ची रहती है उसके अंदर भी जो जीव मिलते हैं लट वाले, वो भी वैसे ही टाइप के होते हैं, दूध में भी ऐसे ही होते हैं, सुन ना, दही में भी ऐसे ही होते हैं। अभी हमें ये कहना है कि जिसका जो रंग होगा उस टाइप के जीव वहां पैदा होते हैं, और ये दो इंद्रिय से लेके जो त्रस जीव है उनकी जो उत्पत्ति होती है और उसमें गिरते हैं समझो, तो वह हम तो मांस भक्षण कर रहे, ख्याल में आया? हमें तो लगता है उसमें क्या, उसमें क्या, अरे भाई सुन तो सही, जब तक हमारी ऐसी मान्यता नहीं होती है, कषायों की मंदता नहीं होती है, तब तक अरे किसने देखा है, आज के दिन तो खा लो, बाहर से कौन देखता है, हम तो रात को नहीं खाते सबको मालूम है, पर इधर कौन, हम तो फॉरेन में आए हैं, हमको कौन देखने वाला है?
वहाँ तो ऐसा भी कहते ना, हमारे तो घर बंद होते हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी,
वो तो दूसरी बात,
ये तो सम्मूर्छन, तो क्या घर देखेगा, पैक बंद हो, हवा बंद हो, एयर टाइट हो, निर्जंतुक भी किए स्टरिलाइज, फिर भी उसमें तो स्टरिलाइज चीजों में भी मर्यादा बताई जाती है, तो बाद में वो मर्यादा क्यों रखी वहां पर, उसमें उस जाति के सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं। और ये सारे अभी जो बात की द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जो औदारिक शरीर, उसको क्या कहते हैं, मांस। द्विइंद्रिय का शरीर, तीनिंद्रिय का शरीर, चतुरिंद्रिय का शरीर और पंचेंद्रिय जो मनुष्य तीरंचों का शरीर, उसको मांस कहते हैं, और मांस भक्षण का जो निषेध है उसके पीछे यही कारण,
उसका जो दोष लगता है किसी जीव को। देखो भाई बात तो ऐसी है कि जिसको सम्यक दर्शन होना है उस जीव को अष्टमूल गुण का त्याग तो होना चाहिए,
धारक,
अष्टमूल गुण का धारक होना चाहिए। अष्टमूल का, अष्टमूल गुण का धारक यानी क्या, कि जिसके कारण से जो हिंसा होती है, ऐसा जो फल है पांच उदुम्बर फल जिसको कहते हैं, मद्य, मांस और मधु, तो ये मांस उसमें है, ये जब तक हम इसका त्याग नहीं करते हैं तो हमारे परिणामों में मंदता नहीं आती है, और परिणामों में मंदता आए बिगर चित्त में स्थिरता नहीं होती है, और चित्त में स्थिरता हुए बिना अपने आत्मा को अनुभव नहीं होता है।
अब जहाँ ये इनको मांस संज्ञा कही है, तो जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से निगोद रहते हैं वो मांस बराबर हुए कि नहीं हुए, ख्याल है ना? क्योंकि यहाँ भी निगोध है वहाँ भी निगोध है। जैसे इन शरीरों के खाने का त्याग, मांस का त्याग है, वहाँ भी उसको अनंत काय कहते हैं, तो वहाँ भी अनंत काय भक्षण से उतने ही इतना ही दोष लगता है। ये बातें, ये सारे डिटेल्स क्यों जानना, क्योंकि जीवों की कहाँ कितने संख्या में बस्ती है वो जाने बिना हम उसको, उस हिंसा को टाल कैसे सकते, उसको बच कैसे सकते।
अभी यहाँ पर एक बात बताइए, अनादि काल से अनंत काल निगोद में ये जीव जास्ती रहा है, ये अनादि काल से नित्य निगोद में तो रहा ही रहा है, बाकी जो उसके अभी उसके बाद जो अनंत काल जो रह गया है उसमें भी अनंत काल तो उसने निगोद में निकाला है, तो केवल हमारे बारे में है क्या? क्या हमारे आज तक के कुछ भव जो हुए है, हम तो कहेंगे असंख्य भव अनंत भव, तो उनके जो कोई माँ बाप होंगे वो उस निगोद में होंगे कि नहीं? तो हम किसका भक्षण कर रहे हैं, हमारे बच्चों के, हमारे माँ बाप के? भाई ये पहली थोड़ी बात खोटी लगे हो, पर जरा चटका तो बैठे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए। ये जानकारी जब हम लेते हैं ऐसे, जिसको हम, ये तो भाई करना नियोग में ऐसी डिटेल में बात आती है, और वह जानने से हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, फिर अमल में आवे नहीं आवे वो तो आगे की बात है, लाए तो बहुत अच्छी बात है, अमल में लाना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो वो अपना अपना निर्णय लेवे। ऐसे बरनी में हाथ डाल के कागज उठाए, आजे कांदा नहीं खावा चलो मुकी दो, आजे बिस्कुट नहीं खावा मुकी दो, वो तो जबरदस्ती हो गई। अंदर में ऐसे भाव होने चाहिए कि मैं आज जन्म ये नहीं कहूंगा, तो उसके कषायों की थोड़ी बहुत ढिलास मंदता आई। क्या मंदा? मंदता आई ना। हाँ, आप आगे बढ़े। क्या मटर?
बटर, बटर माखन मक्खन, उसी में भी उसी जाति, उसमें भी उसी जाति के उत्पन्न होते हैं।
ऐसा है, सुनना, जब हम छाछ बिलोते हैं और मक्खन निकलता है तो उसको कुछ मर्यादा में, उसके अलग अलग टाइम बताए हैं,
अंतर्मुहूर्त के अंदर उसको,
अंतर्मुहूर्त के अंदर उसका आप सेवन करो तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये जो बाजार में मक्खन मिलता है, कौन सा अभी नाम आप नहीं लेंगे, आप तो खाते मालूम है, तो वो तो कितने महीने से तो दुकानदार के पास पड़ा रहता है, नहीं नहीं फ्रीज में रहता है। अरे फ्रीज में भी कॉकरोच भी रहते हैं मालूम है आपको? हाँ, सब में
मर्यादा से, नहीं नहीं फर्मेंटेशन से दही नहीं बनता है, उसको फर्मेंटेशन नहीं कहते, और उसके जो लैक्टिव एसिला है दैट इज नॉट द एनिमल स्पीशीज, दैट इज प्लांट, प्लांट स्पीशीज,
वो प्लांट किंगडम में आएगा,
एनिमल किंगडम में नहीं आता। हाँ, वो तो त्रस उत्पन्न हो गए तो मर्यादा के बाहर हो गए, उतने काल के बाद उसमें त्रसों की उत्पत्ति होगी, तो ये सब मर्यादा के अंदर भक्षण करने का जो कोई नियम होते हैं उसी के लिए होते हैं। देखो दवाइयों के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखे रहती है, तो उसको कितने लोग खाते हैं?
नहीं नहीं आप, आपको,
अरे वो लाते समय बराबर देख देख के लाते हैं।
एक साल बाद का कोई दवा होवे तो छह महीने, लेकिन आचार जितना पुराना उतना अच्छा टेस्ट चढ़ता है, ये लोगों की मान्यता, अपनी नहीं हो, या आने वाला कोई नहीं, ऐसा ही पापड़ में भी बोला जाता है। अभी जाने तो बहुत निकालो मत, अपना विशेष चालू रखो।
देखो देखो, तो पहले में पहले जीव अनादि से ही, यानी अनंत काल तक उसने नित्य निगोद में बिताया है, वहां से दुर्लभता यह है कि पृथ्वी काय आदि अन्य पर्याय उसको प्राप्त हो, ये भी दुर्लभ है। ये क्यों प्राप्त होती पृथ्वी काय आदि पर्याय उसको? पहले तो बार बार निगोद में ही रहता था, निगोद वास क्यों नहीं छोड़ रहा था? हाँ, संकलेश परिणाम के कारण। हाँ, तो जो अन्य पर्याय प्राप्त हुई तो उसके कुछ संकलेश में कटौती हो गई, ख्याल है ना? अभी उसको विशुद्धि को यह संकलेश कुछ घट गए, पहले तो बारंबार वैसे ही संकलेश होते थे कि जैसे निगोद के ही उसको वैसे प्रकृतियां बनती थी, कर्म का ऐसा ही बंध होता था, बारंबार निगोद में ही जन्मता था, ऐसा वो कहते ना भाव कलंक प्रचुर निगोद वासम न मुंचंती, भाव कलंक की प्रचुरता से, कर्म के कारण नहीं कहा, भाव कलंक की प्रचुरता से निगोद वास नहीं छोड़ रहा। अब कहते त्यांथी निकली कदाचित, यानी पॉसिबिलिटी है, कदाचित पृथ्वी अप, अप यानी जल काय, तेज यानी अग्नि काय, वायु काय पर्याय पामे छे, ए पर्यायो पामवी दुर्लभ छे।
कहाँ पढ़ रही हैं?
भावार्थ की सेकंड लाइन, दो नंबर के पृष्ठ पर, पहले यहाँ का पढ़ा था ना हमने। हाँ, अनंत काल निगोद में बिताने के बाद अन्य एकेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना भी अत्यंत दुर्लभ बात है, दुर्लभ में दुर्लभ, मनुष्य तक आएंगे कितना दुर्लभ है वो जो हमें प्राप्त है और जिसका हमें एहसास नहीं है। ख्याल है ना, निकले है सभी वहां से ही। अब आगे अर्थ पढ़ी। हाँ देखो, एकमात्र निगोद राशि जो संसारी जीवों में से, पूरे जीव राशि में से तो सिद्ध अनंत है, उसको अलग हम रखेंगे, और जो संसारी है, संसारी में से तो अनंत तो निगोद वाले हैं। और
मैं जरा बीच में बोलना चाहता हूँ, हमने ऐसा देखा है, यह जो चिंगारी है, चिंगारी क्या बोलते हैं आप लोग, जो अग्नि की चिंगारी निकलती है, वो एक जो ऐसी उसकी चिंगारी निकलती है उसमें असंख्यात अग्नि का एक है, तो बड़ा बड़ा जो जो वनवा बदलते
दावानल
होता है उसमें कितने होंगे, एक बूंद पानी जो होता है उसमें असंख्यात जलकायिक जीव है, तो कितने सागर है असंख्यात। अरे भाई,
फिर भी असंख्यात,
उसमें कितने बड़े बड़े सागर है, वो आखिर वाला जो है स्वयंभू रमन समुद्र, वो तो अब पूरे मतलब तुम्हारे मध्य लोक जो है,
एक राजू का आधा उसका ही है,
आधा भाग तो वो अकेला है,
और ये तो बादर की बात चल रही है
अभी, ये तो हम कह रहे हैं
सूक्ष्म तो पूरे लोक में है
जलकाय कितने होते हुए भी वो असंख्यात है। अब हम कहां डिरावी कर रहे हैं आपको, तो ये इतने पैमाने पे होते हुए असंख्यात है, लेकिन ये निगोदिया जो जीव जिसका एक शरीर है, निगोदिया शरीर, उसमें अनंत है, तो ऐसे सुई के अग्र भाग में तो असंख्यात औदारिक शरीर है, एक इतने से छोटे से टुकड़े में, तो एक एक शरीर में अनंत, तो असंख्यात शरीरों में कितने अनंत, तो एक इतने सुई के नोक के बराबर जो कुछ भाग है बटाटे का समझो या अन्य किसी भी बात का, अब मनुष्य के शरीर पर गिनो तो और देख लेना कितने होंगे, तो ये अनंतता जो है वो अनंतता हमारे दिमाग में जल्दी बैठती नहीं है जब तक हम इतना डिटेल में नहीं समझेंगे। ये सारे नारकी असंख्यात, देव असंख्यात, तीर्यंच बाकी सब असंख्यात, पंचेंद्रिय छोड़कर मनुष्य, पंचेंद्रिय तीर्यंच कितने हैं
असंख्यात,
अच्छा वो भी असंख्यात, बरोबर बरोबर, स्वयंभू रमन समुद्र में है असंख्यात, तो सम्यक दृष्टि है, एक मनुष्य ही ऐसा है
पर्याप्त ही, मनुष्य भी अपर्याप्त ले लो ना वो भी असंख्यात हो गए,
लेकिन पर्याप्त जो है उसकी तो दुर्लभता पता नहीं ना अभी अपने को,
यानी जो वनस्पति कायिक है उसमें दो भेद हमने पहले देखा ना, सिद्ध अनंत है, अब संसारी में से निगोद राशि को अकेला अलग निकालो तो वो तो उसमें अनंत राशि है, और निगोद के अलावा जो अन्य कौन से प्रत्येक वनस्पति कायिक वो असंख्यात है, उसमें भेद भी करो तो भी असंख्यात, बादर करो सूक्ष्म करो पर्याप्त अपर्याप्त वो अलग अलग अपने अपने असंख्यात है, फिर पृथ्वी कायिक असंख्यात, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वो सब अपने अपने असंख्यात है, अब उसके असंख्यात में जो कोई वेरिएशन है वो है, द्विइंद्रिय भी असंख्यात, तीन इंद्रिय भी असंख्यात, चतुरिंद्रिय भी असंख्यात, पंचेंद्रिय भी असंख्यात, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी असंख्यात और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच उनसे भी ज्यादा असंख्यात, मनुष्य भी पर्याप्त अपर्याप्त मिलके असंख्यात, देव असंख्यात और नारकी असंख्यात, बाकी अनंत का प्रमाण एकमात्र निगोद में पाया जाता है। तो एक निगोद में कितने अनंत है? तो सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं, तो ऐसे निगोद शरीर भी पूरे लोक में असंख्यात लोग को 5 बार गुणा करो आपस में, इतने तो शरीर होते हैं निगोद के, और एक एक में अनंत जीव। तो अनंत का कितना उसकी
नहीं समझे, नहीं ये 5 अनंत जो बताए समझे,
5 असंख्यात लोक,
5
असंख्यात लोक को आपस में देखो क्या है। इस पूरे विश्व में निगोद के देह कितने, देह निगोद के शरीर कितने हैं? तो हम कहते पहले स्कंद ने एक जुड़ान रूप, जो एक बटाटा है वो एक स्कंद हो जाएगा, कोई एक ऐसा कोई हम लेंगे तो एक स्कंद कहलाए ना। तो ऐसे स्कंद कितने हैं इस विश्व में? असंख्यात लोक प्रमाण है। एक एक स्कंद में अंडर कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, 2 असंख्यात लोक हुए। एक एक अंडर में आवास कितने हैं? पहले आवास को ले लो, तो आवास कितने हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण। एक एक आवास में पुलवी कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण। एक एक पुलवी में देह यानी शरीर कितने हैं? निगोद के शरीर, असंख्यात लोक प्रमाण। तो टोटल शरीरों के कितने? 5 बार असंख्यात लोक को आपस में गुणा करो, इतने तो निगोद के शरीर हुए। और एक एक शरीर में अनंत जीव, कितने अनंत? सिद्धों से अनंत गुणे। आप पूरा सिद्ध राशि यानी पूरा भूत भविष्य सब ले लो, तो इतने अनंत अनंतानंत राशि तो निगोद में है। असंख्यात का भी प्रमाण देखते जाओ तो कितना अचरज लगा कि एक बूंद में इतने असंख्यात जीव। तो अभी जल की बूंद देगी ना, अभी जो हमें पता है, हमें पता नहीं, ऐसे तो पूरा लोक है। सबसे छोटा तो समुद्र लवण समुद्र है, उसको भी पूरा कहाँ जान रहे हम, तो कोई नदी कोई समुद्र किनारा इतना ही देख रहे हैं।
देखो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि हमने तो आलू प्याज आदि खाना छोड़ दिया है, तो सब लोग बहुत सराहना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसा हम डिटेल में जानते हैं और फिर अपने मन में से ही ऐसा नक्की होता है कि भाई आज से मैं इसका खाने का,
वो खाने के भाव ही नहीं उत्पन्न हो गए,
विकल्प ही नहीं आने चाहिए, तो ये सहज होता है, वो जबरदस्ती करना नहीं पड़ता है और ना कोई त्रस जीव नहीं है, पर जल का ही गए ना हम तो।
अकेले क्षीरोदधि को क्यों पूछा आपने? कुछ नहीं, उनका कुछ कारण तो होगा। पानी लेके अभिषेक करते। अब ऐसे कितने आपको समुद्र मालूम है इस मध्यलोक में? एक लवण समुद्र, एक कालोदधि समुद्र और ये पुष्करवर वगैरह, यानी 2 तो ये ढाई द्वीप के अंदर 2 समुद्र है। लास्ट वाला वो स्वयंभू रमण है, इनमें वो जलचर जीव है। जलचर यानी वो मछली होगी, कछुआ होगा, जो कोई सांप वगैरह। बीच वाले जो असंख्यात समुद्र है उनमें कोई जलचर जीव पाए नहीं जाए। जलचर की बात है, जल काय की नहीं, उसमें जीव नहीं रहते, किसी भी समुद्र में नहीं रहते, द्वीपों में रहते हैं। बीच वाले सभी द्वीपों में क्या है वहां पर? तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है, कुभोग भूमि नहीं, तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि।
द्वीप भी बता रहे
आप जो कुभोग भूमि कहते हैं, ये जो 2 समुद्र देखे हमने ढाई द्वीप के अंदर, उसमें वो द्वीप होते हैं,
वो आइलैंड्स हैं।
आइलैंड्स को मानुष द्वीप कहेंगे, समुद्र के अंदर। लवण समुद्र में 48 और कालोदिक समुद्र में, कालोदधि में 48, 96 उसको अंतर द्वीपज म्लेंच कहते हैं या कुमानुष कहते हैं, उन्हीं को कुभोग भूमि भी कहते हैं, वो बात अलग है। ये बीच वाले द्वीपों की बात है, तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि, क्योंकि यहाँ भी जो जम्बूद्वीप में भी जहाँ जघन्य भोग भूमि है वहाँ तीर्यंच भी हो गए मनुष्य भी हो गए, तो वो तो मनुष्यों की अपेक्षा हम यहाँ है, परंतु बाहर तो मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, वो ओनली फॉर तीर्यंच। वो तो यहाँ होगी, यहाँ जघन्य भी है, मध्यम भी है और उत्तम भी है। कहाँ पर?
यहाँ यानी जम्बूद्वीप में,
दाहिद्वीप में। वो तीर्यंचों के स्पेशल अलग नहीं है, मनुष्य और तीर्यंच दोनों रहते हैं उस भोग भूमि में। हमने देखे ना जम्बूद्वीप में दो जघन्य, दो मध्यम और दो उत्तम भोग भूमिया होती है, छह पर्वत है ना आड़े उसके, ये सारा देखा था हमने भूगोल में। अब बढ़ेंगे आगे क्या? नहीं,
એ લાવે છે એ તમને કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે ઇન્દ્રને પૂછી લઈએ શું કામ લાવે છે, એનું કઈ કારણ નથી, ત્યાંથી લાવે છે। શીર
જેવી એવી ટેસ્ટ હોતી હૈ ઉસકી, ઉસકો લાતે હૈ। શીર જૈસે, દૂધ જૈસી ટેસ્ટ વાલા હોતા હૈ વો પાણી।
શીર કા અર્થ સમજતે હૈ ના,
જૈસે ઘૃત સમુદ્ર હૈ, ક્ષીર સમુદ્ર હૈ,
દૂધ ઓર ધૃત કા અર્થ
ઘી,
लेकिन वो पानी दिखता है घी जैसा, लेकिन है पानी
नहीं, नहीं उसकी टेस्ट है, वो है तो घी जैसा, ऐसा गाढ़ा नहीं होगा,
दूध जैसा भी वो होगा, है पानी, पानी का टेस्ट दूध जैसा। किसमें?
जल कायिक तो सर्वत्र है, क्योंकि पानी है ना, जल कायिक तो सर्वत्र पाया जाए,
जल कायिक है,
जलचर नहीं है। चलो अभी अर्थ पढ़े आप।
चले। देखो यहाँ पर क्या है, बोधि दुर्लभ भावना चल रही है ना, हा? तो इसमें इस जीव को आत्मानुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको तो आज तक, अनादि काल से आज तक, तो उसने अधिकांश अपनी जिंदगानी, जिसको हम कहेंगे एक केंद्रीय पर्याय कहो या निगोद में ही बिताई है। पहले में पहले तो नित्य निगोद में अनादिकाल से रहा है। ये किसकी बात चल रही है? संसारी जीवों की। लेकिन एक बात बिल्कुल ख्याल रखना, कोई भी जीव अनादि से सिद्ध होता ही नहीं। क्या हम कहते अनादि से नहीं थे सिद्ध? हाँ थे, लेकिन वो भी पहले संसार में, यानी ये चार गति में इधर उधर घूम रहे थे, बाद में पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वरूप में एकाग्रता करते हुए सिद्ध बने हैं। तो वो जब संसारी थे तब कोई सिद्ध था कि नहीं? हाँ थे। तो वो कैसे थे? पहले संसारी थे, बाद में सिद्ध बने। लेकिन कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि अनादि से सिद्ध ही होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा ना भाई,
ऐसा मानेंगे तो कोई ना कोई ओरिजिन मानी हमने कि ये ओरिजिन है और यहाँ संसारी भी और सिद्ध भी है, ऐसा नहीं है। कोई अनादि से ही सिद्ध है ऐसा मानेंगे तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट हो गई अभी उसके।
देखो यहाँ क्या लिखा है अर्थ में, देखो पहला पहला क्या लिखा है, आजीव। आजीव એટલે કયો જીવ? अरे आ बधा हमलो, ये बधा में आपड़े बनाया। संसार मां अनादि काल थी मांडी अनंत काल तो निगोद मां रहे छे, यानी आज जीव में जो आज के तारीख में सिद्ध है और उसके पहले वो संसार में थे, तो आज जीव में आ गए वो। हेलमेट तो क्या कहा, आजीव संसार मां अनादि काल थी मांडी अनंत काल तो निगोद मां रहे छे, जो मनुष्यपणु दुर्लभ छे अने तेमा साची समझण घणी दुर्लभ छे। ये हमने चार बातें देखी थी, याद है? कौन सी बातें मैं बताता हूँ आपको, कि ये तत्व की बात सुनने मिलना एक पहला पॉइंट बताया। अभी आगे के तीन पॉइंट कौन बतावे? मंदा याद है? हाँ ठहरो, हाँ बोलो। नहीं बहन आप, हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ बोलो। पहला सुनना सुनना, धारण नहीं लिखा उधर, ज्ञान होना।
इसमें क्या लिखा है उसकी बात, विरला शब्द आया था,
विरला चार विरले बताए ना, एक सुनने वाले तत्व को यथार्थतया सुनने वाले, जानने वाले, अभ्यास करने वाले और धारणा रखने वाले।
पहले धारणा लेना, बाद में चिंतन लेना,
जो भी है,
क्योंकि धारणा के बिना चिंतन नहीं कर सकता है। वहाँ ऐसा आया था ना, विरला निश्रुवंती तत्वम, सुनने वाले विरले हैं और फिर उसको समझने वाले विरले हैं, समझने के बाद उसको धारण करने वाले विरले हैं, और धारण कर किया है, याद तो है सब कुछ, पर बार बार उस पर चिंतन करने वाले दुर्लभ विरले हैं। विरले कहो, दुर्लभता कहो,
एक ही अर्थ होता है। देखो क्या लिखते हैं सेकंड लाइन, मनुष्यपनु दुर्लभ छे तेमा साची समझण घनी दुर्लभ छे, सेकंड पॉइंट पे आए।
देखो मनुष्यपना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से दुर्लभ है, इसका अर्थ कोई कहना चाहेगा? मनुष्यपना द्रव्य से दुर्लभ है, इसका अर्थ क्या होता है? आप प्रभावित ट्राई करो। देखो देखो, द्रव्य ने संख्या लेना तो हमें चार गति की अपेक्षा बात करेंगे तो चार गतियों में नारकी कितने अभी अभी हमने देखे थे, असंख्या थे, देव, तिर्यंच, तिर्यंच अनंत है, और मनुष्य पर्याप्त तो संख्यात है, अपर्याप्त तो के आप कहेंगे अपर्याप्त भी होते हैं, हाँ होते भी है, कभी कभी नहीं भी होते, वो सांतर मार्गना होने से कभी कभी होते भी नहीं, ऐसा भी प्रसंग आता है, परंतु मनुष्यों की संख्या सबसे कम है और बाकी तीन गति वालों की संख्या ज्यादा है, उसको द्रव्य से दुर्लभता कहें। क्षेत्र से मनुष्य जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, नारकी कितने क्षेत्र में रहते हैं, आधो लोक में रहते हैं, ऐसा कहो ना। अभी देव, देव कहाँ रहते हैं, अकेले ऊर्ध्व लोक में ही रहते हैं, तीनों लोक में रहेंगे क्योंकि ऊर्ध्व लोक में तो रहते ही है, मध्य लोक में भी वो व्यंतर वगैरह भवनवासी रहते ही है और अधोलोक में भी वो है ना, हाँ विहार नहीं, भवनवासी व्यंतरों का तो ठिकाना ही है वहां पर रहने का, प्रथम पृथ्वी के ऊपर के दो भागों में तो रहते ही उनके, हाँ कर भाग और पंख भाग में। तो ये क्षेत्र से मनुष्य का, मनुष्य तो ढाई द्वीप है, और तिर्यंच का कितने क्षेत्र में रहते हैं, पूरे लोक में तो क्षेत्र से दुर्लभता है मनुष्यों की। काल में, काल में लेना लगातार मनुष्य 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 बनने का काल, तो लगातार तिर्यंच 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 बनाते बनता रहे कोई जीव तो कब तक रहेगा, कब तक हमें चाहिए, अनादि से अनंत काल तक, कोई अन्य पर्याय नहीं मिले, हो सकता है ना उसको, कोई तो नित्य निगोद में ही रहेगा, और भले बाहर भी आया तो उसको तिर्यंच में ही रहा, उसने बाहर निकला ही नहीं। और फिर देवों का लगातार, देव कितने काल तक रहेंगे, 33 सागर, क्योंकि एक ही भव होगा, लगातार अनेक भव नहीं होंगे। और नारकी 33 सागर, और मनुष्य 2000, वो त्रस की स्थिति है, यानी कुछ पूर्व कोटि है, लगातार पूर्व कोटि के भव करके लास्ट में भोग भूमि का एक भव मिलेगा, तीन पल्य का, उसको कहते हैं पृथक तो कोटि पूर्व से अधिक तीन पल्य। अभी उसमें स्त्री के, पुरुष के, नपुंसक के, ऐसे 8-8 पर्याय, एक अपर्याप्त करके फिर दोबारा 3-3 ऐसे हो सकते हैं। तो ये काल से दुर्लभ, लगातार मैक्सिमम 24x48 भव हो सकते हैं, 48, 24x48, 48वां भव तीन पल्ले वाला ले लेना। परंतु ये लगातार करने वाले तो मिथ्या दृष्टि हो गए, है ना, क्योंकि मनुष्य समय दृष्टि मरकर मनुष्य में नहीं आएगा, वो देव में चला जाएगा, अब बातें हैं किसकी देखी, हमने तिरंज देखे, देव देखे, सब देखे ना, काल की भी दुर्लभता है।
प्रभाव इनको अभी नहीं समझो,
हाँ
डाउट है अभी।
हाँ बोलो, पूछो पूछो। 48 मनुष्य भवों के बारे, स्त्री पर्याय के 8 भव लगातार, पुरुष पर्याय के लगातार 8 भव, एक एक भव पूर्व कोटि का। नहीं समझे क्यों? मनुष्य मरकर मनुष्य में ही उत्पन्न हो सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य मरकर, कर्म भूमि का लंबी आयु वाला मनुष्य कितना हो सकता है? जैसे विधेय क्षेत्र में अपनी अभी आयु कितनी, वहां पर एक पूर्व कोटि के, मरकर वहीं पर फिर उत्पन्न हुआ। लगातार पुरुष के 8, उसके बाद इमीडिएट।
लगातार नहीं समझते तुम्हारी भाषा।
मरकर फिर मनुष्य,
स्त्री छे मरी गई, पांची स्त्री थी, पची मरी गई, पांची स्त्री थी, एम एक पची एक 8 भव स्त्री ना, एक एक भव 1 करोड़ पूर्व नो मळे, एवो 8 करोड़ थई गया।
8 करोड़ पूर्व तो ते थई गया।
हवे आगळ
पुरुष ना 8 भव, एक एक करोड़ पूर्वी ना, पूर्व ना नपुसक मा 8 भव, ये तो पर्याप्त के हो गए 8 त्रिक 24। उसके बाद एक अपर्याप्त का भव,
मनुष्य अपर्याप्त,
मनुष्य अपर्याप्त, फिर लगातार 8 त्रिक 24 भव, 1 करोड़ पूर्व वाले। किसी को हो तो हो, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, सबको मिले ऐसी बात नहीं है। परंतु 1 करोड़ पूर्व में से 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व तो मिथ्या दृष्टि के ही हो गए ना, सम्यक दृष्टि को तो हो गए नहीं वो, क्योंकि वो तो देव में चला जाएगा। तो ऐसे 48 हो सकते पूर्व कोटि के, परंतु मैक्सिमम है। अरे मिनिमम अंतर्मूर्त में मर सकता है ना पर्याप्त जीव, गर्भ में आया अंतर्मूर्त में मर गया, ऐसा भी हो सकता है। ये मैक्सिमम की बात चल रही,
लंबे काल की बात।
48 वाला भव पूर्व कोटि का नहीं लेते हुए, क्योंकि 48 के मैक्सिमम है, तो हम भोग भूमि वाला 3 पल्ले का ले सकते हैं।
बड़ी बड़ी आयु है,
बड़ी आयु वाला
1 करोड़ पूर्व से 1 पल्ले बड़ा, तो 1 करोड़ पूर्व से 3 पल्ले बड़े के नहीं?
आप कहेंगे लगातार भोग भूमि में ये रखो ना उसको, तो 3 पल्ले 3 पल्ले 3 पल्ले लगातार हो गए कि नहीं हो गए? उनको बोलने दो ना, क्यों नहीं हो गए सरलाबेन? हाँ, भोग भूमि का नियम से मरकर देव में ही जाता है, मिथ्या दृष्टि है वो भवनत्रिक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि वो सौधर्म ईशान बनेंगे।
देखो आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि आप तक आपने ऐसा ही सुना है 24 भव वधर्मा वधर मणि है ना, इसलिए आपके दिमाग में ये,
क्योंकि वो 24 अपर्याप्त और 24 पर्याप्त, ऐसे पहले से हम भी ऐसा ही सांभळी होतो, अमे पण कयू पण होतो, सांभळी
पण, अमे पण कयू होतो, पण आवे जारे धवला आदि नो अमारो अभ्यास थयो,
ये बारंबार उसमें बात आती है, ये सब लोग है ना यहाँ ये बता रहे हैं ना,
अंदर एकदम चोखू लखेलू छे, आगम नो आधार छे। हवे सोंती थई
तो मनुष्यपना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से दुर्लभ है। भाव से कैसे?
भाव की दुर्लभता नहीं बताई।
जिन परिणामों के कारण मनुष्य आयु बनती है, ऐसे परिणाम होना दुर्लभ है, क्योंकि 3 इंच पर्याय मिलना तो सुलभ है। अरे नारकी के पर्याय मिलना क्या, नारकी से देव पर्याय मिलना सुलभ है। हाँ। असंख्यात की बात नहीं, इतने जीव देखो सारे ये 3 इंच, इतने हमने अभी इतने 3 इंचों की संख्या देखी, इतने सारे असंख्या द्वीप समुद्रों में 3 इंच रह रहे, और मरकर ये सारे भोग भूमि वाले देव में जाने वाले क्या है ना, तो देवों की पर्याय मिलना सुलभ है, नारकी से भी सुलभ है, और वो तो 3 इंच तो इतने सारे, उसकी तो अनंत प्रमाण है 3 इंचों का, तो वो पर्याय प्राप्त होना तो अत्यंत सुलभ है, मनुष्य पर्याय प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। और यहाँ मेजोरिटी तो पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से हम करेंगे। अपर्याप्त में लगातार मिले तो भी एक अंतर्मूर्त में 8 भव हो सकते हैं, उसका भी टोटल काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होता, तो उसको भी गिनेंगे तो अंतर्मूर्त ही गिनेंगे हम, एक भाव गिनो के ज्यादा गिनो, ख्याल है ना। अब आगे बढ़ेंगे, अभी तो मनुष्य तक तो आना अभी बाकी है, अभी तो हम पृथ्वी काय में आए हैं,
इसलिए तो कह रहे हैं निगोद छूट कर दुर्लभ छे अने तेमा साची समझण घणी दुर्लभ छे। हाँ बोलो बोलो बोलो। सम्मूर्छन मनुष्य क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ सेमा आवे एटले कया अपर्याप्त जे कहवाय छे एने सम्मूर्छन मनुष्य जीव कहवाय छे। सम्मूर्छन एटले जे वातावरण में तैयार थाय एने माता पिता नी गरज नथी एवो मनुष्य पर्यायपन होय एने अपर्याप्त मनुष्य कहवाय। अने एवा अमनुष्य अपर्याप्त मनुष्य जीवो क्वांटिटी में असंख्यात छे अने पर्याप्त तमारा अमारा जेवा मनुष्य पर संख्यात छे। अब आगे तेमा साची समझण घणी दुर्लभ छे। मनुष्य देहना टाणा रे वहाला तने फरी नहीं मळे रे। ऊंटना भवमा तने काटा खावा पड़शे ने मार पड़शे वगैरे वगैरे। ऐसा कोई काव्य होगा? मैं तो प्रोज में पढ़ रहा हूँ, गद्य में। हाँ टाणा यानी ये कहते दोबारा ऐसा चांस तुम्हें मिलना कठिन है। संधि तत्वज्ञान विनाना वैराग्य घना करे तेनी कीमत नथी। मिथ्यात्व रहित ज्ञान गर्भित नित्यानंदना महिमा वालो वैराग्य ते अपूर्व छे। देखो क्या क्या कहा, मिथ्यात्व रहित ज्ञान गर्भित यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और आगे क्या नित्यानंदना महिमा वालो वैराग्य एटले स्वरूप में लीनता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ते अपूर्व छे। अपूर्व छे याने शू के पूर्वे कदी आ जीवे प्राप्त करू नथी ते अपूर्व छे। नित्य निगोद माथी निकली पांच स्थावर एकेन्द्रिय शरीर पामे छे। नित्य निगोद मा एक शरीर मा अनंता जीवो तेनो आहार श्वास जीवन मरण समान छे। एक श्वास ना 18वां भाग जेटलू आयुष्य छे। ये एक श्वास यानी क्या मालूम है प्रभावीन आपको? श्वास उश्वास यानी ऐसा जोर से श्वास लेना छोड़ना वो श्वास, ऐसा आप कहना चाहते हैं ना? आप ऐसा कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं है इसलिए मैंने पूछा। वीरेश भाई आप जानते हैं ना? हाँ 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 बस 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 18 साल का जवान निरोगी कोई जवान लड़का होवे तो उसकी नाड़ी जो होती है यानी ये जो पल्स रेट जिसको कहते हैं वो नॉर्मल होते हैं ना? और कोई छोटा बच्चा होगा और कोई बूढ़ा बीमार आदमी होगा तो उसके पल्स रेट बढ़ते हैं, तो उनको नहीं लेना है, नॉर्मल व्यक्ति को लेना है। तो ऐसे जीवों के जो नाड़ी पकड़ने से ठक ठक ऐसा जो ठक ठक जो होता है वो दो ठक में जितना अंतर है उसको एक श्वास कहा। और वो जो श्वास है उसके भी 1/18 पार्ट में वो जीव जन्मता और मरता भी है। ऐसा मनुष्य पना मिलना क्या फायदा, ख्याल में? तो क्या कहा, श्वासना 18वां भाग जेटलू आयुष्य छे। मान मानस थाय त्या अभिमान मा आंदोलो थाय छे। आगळ केशे के अनंत प्रकारे सर्वज्ञ कथित धर्म पामवो दुर्लभ छे। आगे आगळ कहे छे कि त्यांथी निकळी त्रस पर्याय पामवी दुर्लभ छे।
देखो उसके पहले ऊपर लिखा था ना, पांच स्थावर एकेंद्रीय शरीर पामे छे, निगोद माथी निकली, ये पांचवा किसको लिया? पृथ्वी, अग्नि, जल, प्रत्येक वनस्पति। हाँ, बाकी चार तो आसान है समझना, क्योंकि निगेद इटसेल्फ वनस्पति कायिक है, परंतु वो साधारण है, तो उसमें से निकलकर प्रत्येक वनस्पति कायिक बनना भी दुर्लभ है, ये बात बताना चाहते थे। अब आगे बढ़ेंगे। आगर कहे चके त्याथी निकली, त्याथी ने अभी जो पांच थावर काय में आया है, पहले तो निगोद को छोड़ा और अन्य पांच में आ गया, अब वहां से यानी एकेंद्रीय पर्याय छूट कर त्रस पर्याय प्राप्त करना भी महादुर्लभ है। अभी हम पढ़ेंगे गाथा। तत्रापि असंख्य कालम बादर सूक्ष्मे सुकरोति परिवर्तनम चिंतामणिवत् दुर्लभम त्रसत्वम लभते कष्टेन। वह दुर्लभम करना, दुर्लभम हुआ है ना,
और ऊपर परिवर्तन में,
हाँ परिवर्तन
ये रह गया, तो रह गया भाई
परिवर्तनम, वो बराबर है।
अरे पर के ऊपर ही री ला रहे हैं उन्होंने
परि, अच्छा अच्छा, वो री के लिए एक काना नहीं दिया मात्रा।
आप लोग क्या बोलते गुजराती में, रसवाई रही गई ना,
वो इकार के लिए,
हाँ नीचे का डांडा है उसको,
उसकी डांडी नहीं है, काना मात्रा जो कोई कहे, हाँ पाए नहीं। और ये परिवर्तन में तो जो है वो सिंगल चाहिए,
हाँ डबल तो नहीं चाहिए।
क्या कहते हैं, तत्रापि असंख्य कालम, ये जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक में वो भटकता रहा कितने काल तक, असंख्यात काल तक। देखो ऐसा है ना, सभी एकेंद्रिय निगोद सहित सभी एकेंद्रियों में रहने का काल याद है कितना है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, निगोद सभी एकेंद्रियों में रहने का। अभी निगोद को छोड़ दो तो अन्यत्र सूक्ष्म और बादर में रहने का काल कितना है, तो असंख्य काल तक वहां रहा ऐसा कहा। अकेला सूक्ष्म में रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण है। कैसा, देखो लगातार सूक्ष्म पर्याप्त 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 रहे तो अंतर्मूर से ज्यादा नहीं रह सकता, लगातार अपर्याप्त 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 में रहे तो अंतर्मूर से ज्यादा नहीं हो सकते भव, परंतु कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कितने काल तक, असंख्यात लोक काल का प्रमाण है। असंख्यात लोक तो क्षेत्र बताता है ना, उतने क्षेत्र में जितने प्रदेश होंगे उतने समय गिनो। समझने के लिए बताती हूँ, ये जो अंगुल है इतना छोटा है ना, उसके असंख्यात वे भाग में जितने प्रदेश है उसको हम समयों में गिनेंगे, काल बताना है, तो असंख्याता संख्याता उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है उतने काल में। तो अंगुल में इतने, तो पूरे लोक में कितने, ऐसे असंख्यात लोक यानी कितना बड़ा काल होगा।
अभी सुबह आने का मन होता है
मन हुआ था वो निकल गया तो ये असंख्यात लोक अकेले सूक्ष्म की बात, तो कभी सूक्ष्म कभी बादर, कभी सूक्ष्म कभी बादर, ये तो असंख्यात काल वहां बिताए। उसने निगोद के साथ लेते तो अनंत काल वहां चला जाता है। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन इतर निगोद के साथ अगर लेते हैं तो, अभी उसकी बात अभी छोड़ेंगे हम, तो ये कितना दुर्लभ है वहां से निकलना, ये बात बताना चाहते हैं। ख्याल है ना, आपने बोला था ना वहां से निकले। तत्र अपि असंख्य कालम, किसमें, बादर सूक्ष्म, बादर में और सूक्ष्मों में वहां असंख्यात काल इसने बिताया। करोति परिवर्तनम, परिवर्तन में उसी में बारंबार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहा। चिंतामणिवत दुर्लभम त्रसत्वम लभते कष्टेन, अत्यंत कष्ट से अत्यंत दुर्लभता से, क्या कष्ट किया, विशुद्धि हुई कुछ ये कष्ट हुआ यानी वो ऐसे परिणाम होना, वो कुछ करने से नहीं होते, ऐसे परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है। तो उसके कारण, जिसके कारण ये त्रस पर्याय मिलना, वो भी चिंतामणिवत दुर्लभ है। चिंतामणि किसको कहते हैं, ये ज्वेलर का नाम है वो, उसकी बात नहीं है। हाँ वो तो चिंता में नहीं कि दुकान भले भले स्ट्रीट में हो गई है। क्या कहते हैं? हाँ, चिंतामणि यानी जो हम मन में सोचे कि वो प्राप्त होते, वो चिंतामणि मणि यानी मणि वो रत्न है, तो ऐसा रत्न है कि उसके सामने हम जो इच्छा करें वो तो मिल जाता है, प्राप्ति हो जाती है। देखो पूना में हम जाते हैं ना शिविर करते थे, तो वहाँ एक पंढरपुर का लड़का आता था 6 साल का, अभी नाम मुझे ये याद नहीं उसका। तो जब चिंतामणि की बात, ये मोक्ष मार्ग पढ़ाते थे, तो उसमें है ना चिंतामणि जैसे दुर्लभ वगैरह वगैरह, तो उसने ये चिंतामणि क्या उससे मोक्ष मिलेगा, उसका प्रश्न उस बच्चे का। अरे चिंतामणि रत्न तो हम स्वयं हैं, मोक्ष की इच्छा हो जाए और नहीं मिले ऐसे नहीं हो सकता। तो ये त्रस पर्याय मिलना भी चिंतामणि रत्न पाने जैसा दुर्लभ है। जैसे चौराहे पर आपको चिंतामणि मिल जाए, रस्से में गिरा है, हाँ, तो ये जैसा दुर्लभ है वैसे त्रस पर्याय पाना भी मनुष्य तक नहीं आए हैं, उसकी बात हम कल देखेंगे।